ओम शांति ओम शांति। मधुबन वाले बाबा तेरी बहुत याद आए, हम बच्चे प्यारे बाबा के प्यार भरे पालना और बाबा का सहयोग बच्चों के साथ, बाबा की छत्र छाया बच्चों के साथ, जिस कारण से हम बच्चे बाबा के स्नेह में खोए रहते हैं। खास करके जब आवृत्ति दिवस आता है, हर एक सोचता है कि हम बाबा के सामने बैठे बाबा से मिले। आवृत्ति मास में जो सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, बाबा के साथ के विशेष अनुभव करते हैं, और इस मास के अंदर हम सबका यही लक्ष्य रहे कि बाबा जैसे चाहते हैं हम बच्चों से कि बाप समान बनना है, उसके लिए विशेष अपने अंदर अंतर्मुखी सब संकल्पों को एकदम फुल स्टॉप लगाकर बाबा को सामने रखते हुए बाबा की पालना का अनुभव करते रहे। इस मास के अंदर बाबा बच्चों को विशेष अनुभव भी कराते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाबा ने साकार में भी पालना दी, लेकिन अभी अवित रूप में भी जो संकल्प की रचना है उसे भी बाबा बहुत पालना दे रहे हैं और अनुभव करा रहे हैं। साकार वाले तो यहाँ केवल अभी 3-4 ही होंगे, बाकी तो सब शुद्ध संकल्पों की रचना है। बाबा ने पहले भी कहा है कि अभी समय ऐसा है कि जो भी बाबा को पहचान लिया वो तो बहुत ही भाग्यशाली है, आगे की आने वाली रचना तो टू लेट हो जाएगा। इसलिए बाबा के साथ प्यार की बातें करते हुए, बाबा से अपने भाग्य का वर्णन करते हुए, बाबा जो दे रहे हैं उसका अनुभव करते रहे। तो आज भी प्यारे बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि बाबा ही निष्काम सेवाधारी है। लौकिक में क्या होता है, माँ बाप को होता है, बच्चे की पालना करते हैं, समझते बड़े होंगे बुजुर्ग होंगे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, लेकिन आज के बच्चे क्या हैं वो भी आप जानते हैं। और दूसरी बात, बाबा ने कहा कि मैं तो तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे करके चला जाता हूँ, मैं किसी से कोई भी प्रकार की इच्छा या संकल्प नहीं रहता है कि ये मेरी सेवा करे। फिर बाबा ने कहा देखो ये यूनिवर्सिटी ये स्कूल कितना वंडरफुल है, और स्कूल कोई देखे ये क्यों वंडरफुल है, क्योंकि इसमें बड़े बूढ़े जवान कुब्जा जो भी हैं सब के सब एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य की। आज की तारीख है 16 जनवरी 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं, निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। आज का प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, देखा ना कि ये क्लास कितना वंडरफुल, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है। बाबा के टाइम पर क्या था, सबके सब पट पर बैठते थे, और इतनी ठंडी होती थी और छोटी सी पतली सी दरी बिछी होती थी। अभी तो बाबा ने कितने सुख दे दिए। तो बाबा कहते हैं ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे यह मुख्य मेहनत कौन सी करनी पड़ती, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे यह मुख्य मेहनत कौन सी करनी पड़ती है, इसका उत्तर है यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं और बूढ़े भी बैठे, सब बुजुर्ग हाथ उठाए, देखो आपको बाबा कितना याद कर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आज आए हुए थे, कल भी आए हुए थे, जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जिसमें अहल्याएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर यहाँ बैठेंगे। होता है ना कभी कभी प्रोग्राम होते हैं, साधु महात्माएं भी आते हैं क्लास में, वो एक दिन आकर यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत, याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती। अब नेचर क्योर के लिए जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं उस बैठे रहो बाबा को, बाबा बाबा कहते रहो, बाबा कहते बुद्धि से प्यार से याद करना है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बाप बच्चों का, रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है कि गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते। कई कई बातें ना तो उसका अलग प्रकार से रहस्य बताते, तो बाबा कहते हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं, राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, अभी फिर से हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते, वहां ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हम पढ़ रहे हैं बैरिस्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से बैरिस्टर बनते। बाबा कहते ड्रामा के राज को तुम बच्चे जानते हो, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से ये अक्षर किसको भी कहने में नहीं आएगा, भल गीता में बताया है कि पहले भी सुनाया था, अभी भी सुना रहा हूँ, फिर भी सुनाऊंगा, लेकिन दुनिया में कोई अक्षर कह नहीं सकते हैं। फिर से अक्षर किसको कहने में नहीं आएगा, तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के वापसी पढ़ते हैं, ये विनाश भी फिर से होना, पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, फिर भी होगा, ये विनाश भी फिर से होना है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, अब बनाते जाते सिर्फ इतना उनको है कि हमारे पास बहुत पावर है, लेकिन उसको रखेंगे थोड़ी, जिस समय आवेश आएगा उसको यूज करेंगे। तो बाबा कहते हैं कितने पावरफुल बनाते रहते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, बाबा कहते जो योग युक्त होंगे जिनका बाबा के साथ कनेक्शन होगा वो एकदम पावरफुल रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को डरने की कोई बात ही नहीं है, ये है कल्याणकारी लड़ाई, बाप आते ही हैं कल्याण के लिए, कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। सो तो ये वंश आदि है ही विनाश के लिए, इसमें जास्ती और कोई चीज तो है नहीं, विनाश बॉम्ब से ऐसे है बस एक बटन दबाया फिर फटाफट कुछ न कुछ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसमें जास्ति तो और कोई चीज है नहीं, साथ साथ नेचुरल क्लैमिटीज भी होती है। बाबा ने तीन तरीके बताए हुए ना, एक है नेचुरल क्लैमिटीज, एक बॉम्ब्स और तीसरा है आपकी आपसी लड़ाई। तो इसमें नेचुरल क्लैमिटीज भी होती हैं, उनको कोई ईश्वरीय क्लैमिटीज नहीं कहेंगे। लौकिक में कहते ना ये ईश्वर की क्लैमिटी है, बाबा कहते ईश्वर नहीं है, ये मनुष्य के अपने पाप कर्मों का फल है। बाबा कहते हैं उनको कोई ईश्वरीय क्लैमिटीज नहीं कहेंगे, ये कुदरती आपदाएं हैं, ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में मूल है, ये कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहर के शहर खत्म कर दें, शहर तो छोड़ो अभी तो ऐसे पावरफुल बना रहे देश के देश खत्म कर देते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, ये कहानी तो आप जानते हैं, ये सब जानते हैं, मतलब बॉम्ब्स जो जापान में पहला बॉम्ब ट्रायल किया गया था, आज तक भी उसके जख्म है। आज तक भी लोग जो बहुत पुराने हैं वो बताते किस प्रकार से उनके शरीरों को बीमारी लग गई, क्या क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब चलाए वह तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब शुरू कर देते। अभी तो केवल लड़ाई ऐसी है बॉम्ब की ही दिखाई देती है, क्योंकि चारों तरफ ऐसी हालत है ना। तो बाबा कहते हैं जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा, बॉम्ब से लड़ेंगे तो कितना नुकसान होगा, ये भी ट्रायल कर देख रहे। जो बॉम्ब्स बनाए हैं कितने पावर वाले हैं, ये बीच बीच में ट्रायल करते हैं ना, ये भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्च करते हैं, इन्हें बनाने में वालों की तनख्वाह भी बहुत होती, जो इन बॉम्ब्स को बनाते हैं उनको तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है, तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, एक तो कहता है और सबकी एक इच्छा है कि परिवर्तन हो। तो बाबा कहते विवेक भी कहता है कि पुरानी दुनिया खत्म होना है। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा, अभी तुम संगम पर खड़े हो, जानते हो कि सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सबका विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कलप पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, पक्का करार, नई दुनिया आनी ही है और पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। क्लैमिटीज तो ऐसी बहुत होती हैं, परंतु वह होती है थोड़े अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, कौन सी, कि हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, वे विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है, मीन्स ये परिवर्तन तुम बच्चों के लिए हो रहा है। ये भी गायन है, बाबा बताते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुए। ये भी गायन है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुए। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, कई बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बाबा उसका अर्थ बताते हैं। कई बातें गीता में हैं जिसका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कुछ समझते थोड़ी हैं, वह तो शांति मांगते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होएं। बच्चे कहते जल्दी विनाश हो, जो कहते जल्दी विनाश हाथ खड़ा करे, कोई भी एक भी नहीं है, एक ही है, बाकी दो और माते। अरे जितना संगम युग का सुख लेना वो ले लो, है कहेंगे विनाश हो तो सुख तो खत्म हो जाएगा। सतयुग का सुख तो अपने प्रकार का है लेकिन वो थोड़ी याद रहेगा। संगम युग का सुख जो है बाबा का साथ का ब्राह्मण परिवार का, और क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी हो। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान बनेंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है और कोई की बुद्धि में कम। बुढ़िया समझती है शिव बाबा को याद करने, बस बाबा के पास जब बूढ़ी माताएं आती थी ना तो बाबा को कहती थी बाबा हम तो पढ़ी लिखी है नहीं, हम तो मुरली पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो फिर बाबा कहते तुम्हें करना क्या है, तुम तो और भाग्यशाली, सबसे ज्यादा याद तो तुम कर सकते हो, बूढ़ियों को क्या करना है, बाबा को याद करना है। सब बूढ़ी माताएं हाथ उठाओ, सब बूढ़े नहीं, जवान ही हमारी माताएं, बूढ़ी नहीं है कोई, बूढ़ी कोई नहीं है, सब ऐसी होशियार है, ज्ञान देने में होशियार है और मुरली पढ़ने में होशियार है, मुरली समझाने में भी होशियार है। ये बूढ़ी यहाँ आज कोई नहीं बैठी, सब जवान है, कोई ऐसी जो कि मैं मुरली नहीं पढ़ सकती, नहीं ना। तो बाबा कहती है बाबा अनेक प्रकार के पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़िया समझती है शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, सबसे ज्यादा वर्षा कौन पाती है, बुढ़िया पा लेती है क्योंकि सबसे ज्यादा बाबा को वो याद करती है। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है, प्रदर्शनी में सब जाएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकों आदि सबका उद्धार होना ही है। मित्र भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, ये जो थी सारी प्रथा उसको गांधी जी ने मिटाने का कितना काम किया, बहुत कुछ किया, काम से फ्री कर दिया। साथ में खाते भी हैं, गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन चलाया था जो भी नेता थे उनके साथ बैठे, नहा धो करके आए और बैठे, साथ में बैठे खाते भी थे। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना है। बाबा थोड़ी मना करते कोई आता है, बाबा तो समझाते इन्हों का भी कल्याण करना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदान है बाप से बुद्धि योग लगाने का, बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं, वो तो व्यवसाय से है लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने कितना बना दिया, अछूत से कोई भी नफरत नहीं करता है, उनको ही पूरे अधिकार दिए जा रहे। आत्मा कहती मैं अछूत हूं, इस आत्मा में विकार है, आत्मा कहती मैं अछूत हूं। अब समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीमी आती थी, सबको एक कहानी शुरू की पता है, दानियां सुनाती थी। सिंध में बाबा के टाइम पर एक भीमी आती थी और वो जैसी आके बैठती थी वो ध्यान में चली जाती थी। तो फिर बाबा वही बता रहे हैं, तुमको मालूम है सिंध में एक भूलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर बाबा से मिल जाती, आकर के बाबा को चिपक जाती थी, बाबा से मिल जाती। बाबा ये थोड़ी कहेंगे अछूत है क्यों मिले, वहां सब ब्राह्मण जो भी थे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि वो तो आत्मा तो ज्ञान ले सकती है ना। दौड़कर आई मिलती थी, समझाया जाता था इसमें भी तो आत्मा है ना, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना, कोई भी हो, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया तो इनको ज्ञान उठाने दो, तो बोला हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। उसमें तो छुआछात बिरादरी कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था ना, तो वो आती थी तो परिवार वाले ऑब्जेक्शन उठाते थे, तो उनके परिवार वालों को कहा कि इसको आने दो, ज्ञान सुनने दो। परिवार वाले भी अच्छा समझते थे, लेकिन कहा कि हमारे जो कास्ट है बिरादरी में जो कास्ट है उसमें झगड़ा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, तो उन्होंने बंद कर दिया। फिर क्या किया वो बताया है, बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे उनको ले गए। वो आती थी डर के मारे आए, चुपचाप उसको उठा के ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते। कोई भी आता है, कैसा भी आता है, बाबा कहते ज्ञान के लिए मना नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे पास आते हैं तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ भी है, अब लाए गए कहें, बाबा कहते गाया हुआ भी है, अब लाए गए कहें, बोली मैया साधु पास सबका उधार करना। भोले भाली साधु अबलाए गण का जो भी आएंगे, बाबा कहते सबको आपको ज्ञान देना है, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। अब ये ज्ञान साधुओं से लेकर भीलनी तक, ऊंच से ऊंच और सबसे जिसको नीच समझते हैं उनको भी ज्ञान देना है। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, इस सर्विस में बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि हो गई। जब पहले पहले प्रदर्शनी चली, फिर थोड़े थोड़े स्थानों पर लगाई गई थी, बाबा ने कहा था दिन प्रतिदिन इसके द्वारा सेवा की वृद्धि होगी। बाबा आगे चल के बाबा ने कहा बेहद के साधन भी निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा बैजेस भी बनवाते रहते है ना, सबके पास बैज, जिसके पास ना हाथ खड़ा को, जिसने ना पहना हो, सबने पहना हुआ है। और वो भी जो आए हैं जिन्होंने बाबा मिलन के लिए बैच नहीं लिया वो हाथ खड़ा करो, वो आज भी जाकर के क्लास के बाद बाबा मिलन का बैच भी लेंगे। बाबा कहते हैं बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है ये बाप है ये दादा है, ये बाप है ये दादा है, ये बाप का वर्षा है। अब बाप कहती है मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है माम एकम याद करो, सिर्फ उसमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, ये भी पता नहीं है। फिर क्या होता है आगे वो भी पता नहीं है, उनकी शादी आदि की हिस्ट्री आदि कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, ये बातें बाप बैठ समझाती हैं। ये अगर समझ जाएं और कह दे कि श्री भगवानों वाचे तो सब उनको भगा दे। वो तो कहते ना श्री कृष्ण भगवान वाचे, बाबा कहते अगर वो ये कहना शुरू कर देंगे तो उनके जो भी फॉलोअर्स है वो सब उनको छोड़ देंगे, तो ये सबको भगा दे। कहीं तुम फिर ये कहाँ से सीखे हो, ये कौन सा तुम्हारा गुरु है, सदियों से ये सुनते आए हैं, अब तुम्हें नई बात सुना रहे तो सुनते नहीं है, ये तुम्हारा कौन सा गुरु है। कहे बीके हैं तो सब बिगड़ जाए, उनको बता कि हमको वीके ने समझाया तो वो क्या करेंगे, फिर बिगड़ने लग जाएंगे। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए, ऐसे बहुत आते हैं लिख करके भी देते हैं फिर गुम हो जाते। बाबा के टाइम पर कई सन्यासी आते थे और वो कहते बाबा हम समझते तो हैं लेकिन हम नहीं बता सकते, अगर हम बताएंगे तो इतने वर्षों के जो हमारा सुन रहे हैं वो कोई भी नहीं सुनेगा, फिर हमारा कारोबार भी नहीं चलेगा। तो श्री बाबा कहते हैं ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे की परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बाप क्या हुआ, बाबा कहते बाबा बच्चों का सर्वेंट हुआ। बाप बच्चों की सेवा कर परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना, ये बाप तो क्या करते हैं, बाबा क्या है, ये बाप तो बच्चों की पालना कर साथ ले जाते, वो उनको बिजनेस पे लगा देंगे, ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो और अपने धंधे में लग जाए और फिर हम जब बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये बाप क्या कहते हैं, ये बाप तो सेवा मांगते ही नहीं, बाबा कभी नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा ने कभी किसकी सेवा नहीं ली, और ही बाबा खुद सबकी जाकर सेवा करते थे। कुछ भी होता था पहला नंबर बाबा खड़े होते थे। बाबा कभी कभी किसको कहते थे ना बच्ची ये सेवा है, वो कहेगी बाबा मैं बहुत बिजी हूँ मेरे को ये काम है, बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं। बाबा खुद खड़े हो जाते थे फिर वो बच्ची दौड़ करके आ जाती थी। बाबा कहते बाबा सेवा नहीं मांगते हैं और ही सेवा करते हैं। बाप समझेगा बच्चा बड़ा होगा अपने धंधे में लग जाएगा फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, ये है ही निष्काम। ऐसा निष्काम सेवाधारी दुनिया में कोई ना मिले, ये है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। बच्चे भी समझते हैं बाप माँ बाप की संभाल करना, कई कई बच्चे तो ऐसे निकल आते हैं जो संभाल की बजाय और ये सब ले लेते हैं। बाबा कहते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये काम न रखते हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता, बाबा को कोई भी प्रकार की संकल्प नहीं कि मेरा करे। बाबा के लिए आते थे, बाबा को कहते थे बाबा हम आपके लिए करें, बाबा कहते थे नहीं। बाबा के सामने झुकते भी थे तो बाबा कहते झुकना नहीं है, बच्चे हो अधिकारी हो। तो बाबा कहते हैं ये बात तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, हम राजाई नहीं करते हैं। मैं कितना निष्काम हूँ और जो कुछ भी करते हैं उसका फल उनको जरूर मिलता है, ये तो है ही सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंच पद पाते। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो। अब बाबा कहते तुम तो कितने भाग्यशाली, ब्रह्मांड के भी मालिक हो, नई दुनिया के भी मालिक हो। तो बाबा कहते मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ और सो तो तुम भी हो, परंतु राजाई लेते भी हो और गवाते भी हो। हम राजाई नहीं लेते, बाप और बच्चों में अंतर, बाप बच्चों को राजाई देते लेते नहीं है, परंतु हम राजाई नहीं लेते हैं और ना ही गवाते हैं। हमारा ड्रामा में ये पार्ट है, तुम बच्चे स्वर्ग का सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, तुम बच्चे स्वर्ग का सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते। बाबा के बच्चे सुख शांति दोनों, वो बाहर वाले जो है नहीं दूसरे धर्म के, वो केवल शांति मांगते हैं। तुम बच्चे सुख का वर्षा पानी का प्रसारित करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग तो कह देते सुख काग विष्टा समान है, इसलिए शांति ही चाहते हैं। वह ये नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं, सुख भोगा ही नहीं है, थोड़ा बहुत अनुभव है तो इतना मांगते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला मैं एक ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु कोई होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, ना गुरु होता है ना भक्ति होती है, ना कोई एडवाइजर होता है ना कोई रावण होता है, वहाँ रावण होता नहीं है। ये वह है ही ईश्वरीय राज्य। सतयुग त्रेता को क्या कहेंगे, वह है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, ओ ये बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं, बाबा के बच्चों की बुद्धि में बैठेंगी। बाबा कहते ये बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं, तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और ऊंच पद पाना है। अभी हो तुम संगम युग पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, सो तो तुम ही हो संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुग में। परिवार में ज्ञान में चलता वो संगम युग में, और बाकी जो है कलयुग में होते हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। वह तो कलप की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना, गाया हुआ है भी है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। आप देखते हैं कुंभकर्ण का जो मॉडल देखते हैं, पीस पार्क में कुंभकर्ण का मॉडल है, वहाँ उसको सब प्यार से देखिए। माँ बाप बच्चों को जरूर दिखाएंगे, ये जरूर देखना है, फिर उसके बाद बच्चों को पक्का करते रहते कुंभकर्ण नहीं बनना। और अभी क्या एक नया सेवा का साधन बना दिया व्यसन मुक्ति का, वहाँ पर गांव गांव में गाड़ी में कुंभकर्ण ले जाते हैं, और वो जाकर के वहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े कुंभकर्ण ऐसा कुंभकर्ण तो देखा नहीं है ना, देखने के लिए वो खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं थोड़ा ज्ञान, थोड़े थोड़े कुछ प्रॉमिस भी करते हैं। क्यों, बाबा कहते कुंभकर्ण सोए पड़े हैं, इनको जगाना भी है। तो बाबा कहते हैं गाया हुआ भी है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं, तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मण ही यज्ञ रचते हैं और ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते, अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं। बाबा कहते हैं बेहद का जो यज्ञ है इसमें सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बाबा कहते हैं वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात ही नहीं है। ये सब है हद के यज्ञ और ये है बेहद का यज्ञ। वो सब है हद के यज्ञ और ये है बेहद का यज्ञ। ये बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो कौन बैठ के यज्ञ रचेगा करेगा। तो बाबा कहते फिर आधा कल्प कोई भी यज्ञ नहीं होगा, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है, ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग के बाद। इस यज्ञ में क्या करते हैं, ज्ञान और योग की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और विकारों की बुराइयों की आहुति देते हैं। इसमें है मुख्य ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, याद अक्षर बड़ा मीठा है। योग कहने से भारी हो जाते ना, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। बाबा कहते कौन है बाबा को याद करना। याद अक्षर बड़ा मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई समझते नहीं। योग का अर्थ तो कई प्रकार के उसके एक्सप्लेनेशन है, हठ योग भी है, एक्सरसाइज भी है। तो बाबा कहते योग का अर्थ कोई समझते नहीं है, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हो बेहद का। आत्मा बात करती है, किसे बात करती है, बाबा से। बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। बाबा से ऐसी मीठी बातें करते हो, बाबा आप हम आपने हमको अपना बनाया, हम तो भूल गए थे, अब आप आए हो, वर्षा देने आए हो। तो बाबा कहते याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई समझते नहीं है, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा क्या बात करते, बाबा आप तो फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। भूल गए थे ना, बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपके श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। अब ये बात पक्की है कि नहीं, क्या बात बताई बाबा ने, पहले बाबा से बातें करो, फिर क्या करना है, बाबा से वायदा करना है। कौन सी वायदा, बाबा हम आपके श्रीमत पर जरूर चलेंगे। कौन सा वायदा, बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। अवित्य मास में तो बाबा से वायदा करो, बाबा इतनी पालना करे, कम से कम बाबा से वायदा तो करे ना। बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। देखो बच्चे इतने भोले, उनको ये भी पता नहीं है कि बाबा से बात क्या करनी। औरों से बहुत बातें कर लेंगे, लेकिन बाबा से क्या करनी पता ही नहीं है। बाबा उनको सिखा रहे हैं, बाबा आप तो हमको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कलप कलप भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते, क्या बनाते, अभूल बनाते हैं। इसलिए बाप को याद करना ही है, कुछ भी हो जाए बाप को याद करना ही है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हो। क्या गाते रहते हो, तुम दुख हरता सुख करता, मैंने गाते हैं, परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ मुंडा हुआ है। ये भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है। भक्ति में कहते ना हजारों सूर्य मिसल है, उसकी ताकत वो है, लेकिन वो इतना बड़ा तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते। टीचर तो बहुत सिंपल होता है, बाबा कहते वो सामने होता है, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते। कितने ढेर बच्चे हैं, ये देखो ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है ना, वंडरफुल क्लास। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देखता है, बाबा के टाइम पर कोई इधर उधर देखता था तो बाबा कहते बुद्धि कहीं और जा रही। फिर कोई ऐसे आते थे तो बाबा को समझ आ जाती थी, बाबा समझ आते थे। फिर बाबा कभी कभी मुरली क्लास के टाइम खड़े होकर के सबको दृष्टि भी देते थे और बाबा कहते ऐसी वंडरफुल क्लास तो कहाँ मिलेगी, है कोई ऐसा वंडरफुल स्कूल और वंडरफुल क्लास। बाबा कहते हैं कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ते हैं, अबलाएं पढ़ती हैं, खूब जाएं भी पढ़ती हैं, साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बूढ़े छोटे बच्चे आदि सब बैठे, बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सबके सब इस क्लास के स्टूडेंट हैं। बुजुर्ग होगा 80 साल का होगा, कहेगा मैं क्लास का स्टूडेंट हूँ। उसको कोई पूछेगा अरे तुम क्या बोलते हो, कहते नहीं मैं क्लास का स्टूडेंट हूँ। बच्चा भी कहते मैं क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा स्कूल कभी देखा है, ऐसा स्कूल कभी देखा है। हाँ यहाँ है याद की मेहनत, स्कूल की पढ़ाई, ज्ञान और याद की मेहनत, ये याद ही टाइम लेती है। ज्ञान तो जल्दी समझ आते, बाबा कहते ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी तो ज्ञान है ना, ज्ञान से याद करते हैं, याद का पुरुषार्थ करना ये भी तो ज्ञान है ना, याद के लिए भी ज्ञान है। याद कैसे करना है समझ चाहिए, तो बाबा कहते याद के लिए भी ज्ञान है, चक्कर समझाने के लिए भी ज्ञान है। याद का पुरुषार्थ करना याद के लिए ज्ञान है, चक्कर समझाने के लिए भी ज्ञान है। नेचर सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता, आप समझ लो नेचर सच्चा सच्चा नेचर क्योर कौन सा स्थान है, मधुबन है। बाकी स्थानों पर जाएंगे नेचर क्योर कराए, भले वो बाहर शरीर की कराओ लेकिन आत्मा की नेचर क्योर ज्ञान और योग से होती है। नेचर सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है, जिससे तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर, ये है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमारे सन्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना, बाबा आया है विश्व के बादशाह देता है, तो बाबा कहते हैं बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है, बाप को वर्षी को और घर को भी याद करो। किस किस को याद करना है, बाबा को भी वर्षे को भी और अपने घर को भी याद करना है। हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है, बाप को वर्षे को और घर को याद करो। वह है स्वीट साइलेंस हो, हमारा घर कैसा है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वहाँ तो लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है, बच्चों को यही फोड़ना होना चाहिए। कौन सा, बच्चों को यही फोड़ना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बन। कौन सा फूरना, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाए। साकार में बाबा ने कितनी मेहनत की, बाबा को हर समय याद रहता था मुझे पुरुषार्थ करना है, तपस्या करनी। बाबा का तो वैसे तपस्वी स्वरूप था, बच्चे बाबा को कहते बाबा आप इतना पुरुषार्थ क्यों करते, बाबा कहते तुम क्या चाहते हो, मैं कम पद पाऊं, ऊंच पद नहीं पाऊं, मुझे तो करना ही है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चों को क्या करना है, यही पूर्ण होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, फिर उसको उगाड़ना चाहिए। उगाड़ना में जैसे गायें खाती है ना, एक बार खा लेती फिर सारा दिन उसको अंदर ही अंदर उगाड़ती है। तो बाबा कहते बच्चों को क्या करना है, विचार से मंथन करना है। ये रूहानी भोजन मिलता है उसको फिर उगाड़ना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स सुने, पहले विचार करो कि कौन कौन से बाबा ने मुख्य पॉइंट बताई हैं और किसको हम कैसे मनन करना, वो सारा करना है। तो बाबा कहते फिर उसको उगाड़ना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स सुने, ये भी समझाया है कि यात्राएं दो होती हैं, एक है रूहानी और दूसरी है जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। कौन सी यात्रा काम आएगी, रूहानी यात्रा। भगवानों वाचे मन मना भाव, बाबा क्या बताते हैं कौन सी यात्रा मदद करेगी, रूहानी यात्रा। और वो कौन सी है, मन मना भाव। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा, पहला है ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है इसलिए डरना नहीं है। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य करता है, इस समिति से सदा खुशी में रहना है। दूसरा सदा एक ही फुरना रखना है कि सत्तु प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। सदा एक ही फुरना रखना है कि सत्तु प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगाड़ना है, विचार सर्व मंथन करना। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगाड़ना है। वरदान स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कलप के लिए विधान बन रहा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी। इस समय आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कलप के लिए विधान बन रहा है। तो जो स्वयं को विधान की रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो स्वयं को विधान की रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर ही हम विधान की रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाए। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आज का व्यक्ति शहरा और जो टाइटल चल रहा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। जीवन मुक्त रहने का सहज साधन मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब खत्म। जब एक मेरा बाबा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना, हम ब्राह्मण जीवन बंधन मुक्त आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहने ध्यान से सुनेंगे। 18 तारीख को अव्यक्ति दिवस है और अव्यक्ति दिवस के लिए क्या क्या सूचनाएं होंगी कल ही, और बाबा मिलन के लिए भी सूचनाएं कल ही दी जाएंगी। जो भाई बहने शांतिवन से एक रात या दो रात के लिए हाथ खड़ा करें, जो भी भाई बहने शांतिवन से एक रात दो रात के लिए आए हैं, सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि 18 जनवरी के लिए बहुत से भाई बहने आते हैं, इसलिए सबको एडजस्ट होकर के रहना। आएंगे एक रात के लिए तपस्या के लिए, कहेंगे कि हमारे को ये कमरा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जो बाबा के घर में इतना भी तीन पैर पृथ्वी मिल रही है, एक कदम रखने की जगह मिल रही है, उसमें संतुष्ट रहना है। क्योंकि अव्यक्ति दिवस के निमित्त बहुत से भाई बहने आते हैं और यहाँ पर चारों तरफ कुछ न कुछ चल भी रहा है, वहाँ टाइट जगह है, इसलिए सबको ये ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करे। बाबा से मिलने आए हैं, ना कोई कंप्लेन ना कोई बात, क्योंकि बाबा कहते हैं हमको बाबा के दिल तख्त पर बैठना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी कहे ये नहीं वो नहीं, इसका सबको अपने आप को एडजस्ट करना है। या तो बाबा से मिलो या फिर एडजस्ट करो, दोनों बातों को साथ में लेकर के चलने का है। कल भी देखेंगे बहुत से भाई बहने आएंगे और ये अव्यक्ति दिवस के निमित्त सजावट के लिए भी फ्लावर ग्रुप भी काफी सारा आ चुका है, आज भी बहुत आने वाले हैं। बाबा के घर में एक एक इंच की भी बहुत वैल्यू है, इसलिए सबको हर इंच की वैल्यू समझ करके ही रहना है। इस बात के लिए सबको अपना सहयोग देना है। बाकी तो बाबा के घर में सदा ही वेलकम है और बाबा तो अपने दिल तक पर बच्चों को विराजमान करते, सबका बाबा के घर में स्वागत है। बाबा के लिए अभी आप सभी ताली बजाओ, बाबा को थैंक देते। हम सब बाबा को बहुत थैंक देते हैं कि बाबा हमको प्यार से अपनी गोदी में समा करके बैठा है। और दूसरी बात, जो भी भाई बहने आए हैं उनको हम पहले से बता दें कि सबका नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है, नीचे किसी को भी बैठ करके या खड़े होकर के नाश्ता नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर अभी जगह कम है और 18 जनवरी को भी अव्यक्ति दिवस पर भी बहुत से भाई बहने आएंगे, उस समय भी सबको शांति बना करके रखना है और उस समय भी सबका नाश्ता ऊपर के डाइनिंग हॉल में रहेगा, नीचे कोई भी नहीं खड़े होंगे और सब धीरे धीरे सबको प्यार से मिलता है। तो 18 जनवरी का प्रोग्राम किस प्रकार से रहेगा वो कल प्रातः मुरली क्लास के बाद आप सबको बताया जाएगा। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, उनको आज सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। नाउ विल सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस, आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक, टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड। ओम शांति।